राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। ओके, वो शॉर्ट क्लास रहे। हरे कृष्णा, ठीक है, आप बैठो। शादी का इनविटेशन है कहाँ? इंडिया में, टोरंटो में। कब है? अच्छा, देखो मिलता हूँ। अभी हम बैठो, अब क्लास में बैठो। Can someone play cartels in the front? इधर which one? But इधर बैठो, इधर play here. Some more cartels. Jai Radha Madhava, Jabehari. Jai Radha Madhava, Jabehari. Gopi jana vala bha yuvaradhari. Gopi jana vala bha yuvaradhari. Jai Radha Madhava, Jabehari. Jai Radha Madhava, Jabehari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Jamna Thira Vannachari. Jamna Tira Vannachari. Jai Radha Madhava, Jabehari.
जय राधा माधव जपिहारी गोपी जन वल्लभ वरधारी गोपी जन वल्लभ वरधारी शोदनंदन ब्रज जन रंजन शोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जबिहारी गोपी जन वल्लभ वरधारी गोपी जन वल्लभ वरधारी शोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुनातीरा बनचारी जमुनातीरा बनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Radha Parsati Radha Parsati Radhe. Jai Sita Ram Lakshmanaroma. Jai Sita Ram Lakshmanaroma. Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav, Hari Bhav. Hari Bha, Hari Bha, Hari Bha, Hari Bha.
Jai Om Vishnu Padma Mahansa Dwayanga Savita Bhaktivinoda Swami Prabhupada Maharaj Ki Shri Shri Radha Parvati Ki Shri Shri Gaurataya Ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. Gopal, hurry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Hari Kadashi ko hum log Srila Prabhupada Leela Amrita se padhte hain. Srila Prabhupada Leela Amrita mein Prabhupada ji ke jeevan ke vishay mein pura varnan hai aur kis prakar Prabhupada ji ne प्रयास करके इस संस्था की स्थापना की. तो आज हम थोड़ी देर के लिए लीलामृता पढ़ेंगे और बाद में चैतन्य चैतन्यमृता का भी एक श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि हर सोमवार को यहाँ चैतन्य चैतन्यमृता की क्लास होती है. यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, नो यू सिट देयर, दे आर ट्रांसलेटिंग देयर इंग्लिश. Om Agyanta Mirandasya Yananjana Shalakya Chakshuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovestam Sthapitam Yena Bhutale Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamlam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajevam Vetam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha. हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्ते सप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूते देवी धनवानी हरिवे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच परितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। आप सब कल रात के संकीर्तन फेस्टिवल में थे, आप कई भक्त नहीं थे। अच्छा उत्सव था। आज शाम को संकीर्तन फेस्टिवल पंजाबी बाग में है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। तो इस समय हम लीलामृता के उस अध्याय से पढ़ रहे हैं जहां की वर्णन किया है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने अलग स्थानों में जाकर कृष्ण भक्ति की स्थापना की और केंद्रों की स्थापना की। यहाँ आज की रीडिंग है न्यू वृंदावन के विषय में और तारीख है May 21, 1969। तो प्रभुपाद जी ने 1966 में पहले केंद्र की स्थापना की थी और 69 तक प्रभुपाद जी ने लगभग नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा के बीच में 15 केंद्रों की स्थापना कर दी थी। और उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा था इंग्लैंड केंद्र कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। और इंग्लैंड जाकर प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्हें भी काफी संघर्ष करना पड़ा। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इंग्लैंड में कृष्ण भक्ति का की स्थापना हो और केंद्र बने, क्योंकि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत जी ने भी प्रयास किया था इंग्लैंड में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर उनके शिष्य जो उन्होंने भेजे थे वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे यहां से।
वृंदावन May 21, 1969। तब कीर्तन आनंद स्वामी और हयग्रीव को साथ लेकर प्रभुपाद ने कोलंबस से वेस्ट वर्जीनिया पहाड़ियों में स्थित न्यू वृंदावन फॉर्म प्रोजेक्ट की यात्रा की।
सबको सुनाई दे रहा है? पीछे सुनाई दे रहा है? पीछे सुनाई नहीं दे रहा हूँ।
जब उनकी कार फॉर्म के प्रवेश स्थल के निकट एक पड़ोसी के बगीचे में फंस गई, तो प्रभुपाद ने अंतिम 2 मील की यात्रा कीचड़ भरी सड़क से पैदल पूरी करने का निश्चय किया, किंतु सड़क का शीघ्र ही अंत हो गया और उनके दोनों मार्गदर्शकों ने घने जंगल में जाने वाली एक पगडंडी का सहारा लिया। मध्यमई के वृक्षों में नए किसले अभी भी फूट रहे थे और उनकी शाखाओं के मध्य से आती सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गहरी नील लोहित धूप का निर्माण कर रही थीं। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव के आगे आगे तेजी से चल रहे थे। उनके साथ होने के लिए उन्हें तेजी से चलना पड़ रहा था। एक घुमावदार नाला बार बार उनके मार्ग को काटता था और प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदकर उसे पार कर रहे थे। उन्होंने कहा, उस मार्ग पर बैलगाड़ी से यात्रा कठिन ना होती। जंगल घना था, जैसे कि उन्होंने आशा की थी और चाहा था।
एक और पैराग्राफ।
प्रभुपाद गत वर्ष से कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से न्यू वृंदावन के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे और इस पत्र व्यवहार से कृष्ण चेतन ग्राम जीवन की दिशा निर्धारित हो गई थी। प्रभुपाद ने कहा था कि वे जीवन को वैदिक आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे, जिसमें हर एक का जीवन सादा हो, गौ में रखे और कृषि कर्म करे। भक्तों को ऐसी विचारधारा का विकास समय समय करना होगा। इसमें समय लगेगा, किंतु प्रारंभ में भी मूल स्वर होगा सादा जीवन, उच्च विचार। चूंकि समुदाय नगर से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए शुरू में यह असुविधाजनक और कष्टप्रद होगा, किंतु जीवन शांतिपूर्ण होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए घोर परिश्रम पर आधारित कृत्रिम नगरीय समाज की चिंताओं से मुक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समुदाय के सदस्य कृष्ण की सेवा में लगे होंगे और उनके नाम का जप करेंगे।
प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में कई शहर हैं जिनका नाम था न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू ऑर्लियंस। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके देश में नया यॉर्क है, न्यूयॉर्क मतलब नया यॉर्क, न्यू जर्सी मतलब कि नया जर्सी, न्यू ऑर्लियंस मतलब नया ऑर्लियंस। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके देश में एक नया वृंदावन भी होना चाहिए। तो फिर इस कारण वो जो फार्म कम्युनिटी आरंभ की थी उसका नाम प्रभुपाद जी ने दिया न्यू वृंदावन। उन्होंने कहा वृंदावन, प्रभुपाद जी की तो इच्छा थी कि सारे विश्व में वृंदावन की स्थापना हो, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रोजेक्ट का नाम न्यू वृंदावन दिया। और ये न्यू वृंदावन कम्युनिटी जो है कोलंबस से कोई एक घंटे की दूरी पर है, कोलंबस जो है अमेरिका के बीच में है लगभग। तो वहां प्रभुपाद जी ने अपने दो शिष्यों को भेजा था, खास करके कीर्तनानंद स्वामी जो प्रभुपाद जी के पहले शिष्य में थे, और आपने हरिग्रीवा का भी नाम सुना। हरिग्रीवा प्रभु उस समय इंग्लिश भाषा के प्रोफेसर थे कोलंबस यूनिवर्सिटी में, और शुरू शुरू में उन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत सहयोग दिया, प्रभुपाद जी की किताबों को एडिट करते थे, और जो बैक्टिक ऑडिट मैगजीन थी अंग्रेजी में उसके भी एडिटर थे। पर कई साल पहले उनका देहांत हो गया था हरिग्रीवा प्रभु का। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद और हरिग्रीवा को भेजा था न्यू वृंदावन की स्थापना करने के लिए, और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि न्यू वृंदावन की स्थापना हो बिल्कुल जैसे वृंदावन शहर है। वहाँ जैसे शहरों में तो आज तो लोग ज़्यादा तंग आ गए हैं पहले के मुकाबले में, शहरों में इतनी भीड़ रहती है, मोटरें रहती हैं और पोल्यूशन। प्रभुपाद जी का विचार था कि न्यू वृंदावन, जहाँ की भक्तों ने लगभग 2000 एकड़ जमीन खरीदी थी, वहाँ इस समय आज भी इस्कॉन के 2000 से ज़्यादा जमीन है, 2000 एकड़। अमेरिका में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 2000 एकड़ रखना। तो वहाँ इस्कॉन का आज भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ की उस समय तो काफ़ी भक्त थे और आज भी हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ा गौशाला भी है। जब वहाँ शुरू शुरू में गायें आई थीं तो उनके मन में बहुत भय था कि हमें कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो पशु हैं वो भी समझ पाते हैं जब उनके जीवन में खतरा हो। पर जब वो आए न्यू वृंदावन में गायों को लाया गया तो उन्होंने देखा कि भक्त इतने प्रेम से उनसे संबंध रख रहे हैं कि उनका दूध का जो उत्पादन है समय के साथ लगभग दुगना हो गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि भक्त कितने प्रेम के साथ उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी हरिग्रीवा और कीर्तनानंद स्वामी के कहने पर वो वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन में गए। वेस्ट वर्जीनिया है स्टेट का नाम, जैसे करनाल है हरियाणा में, तो वेस्ट वर्जीनिया है स्टेट का नाम जहाँ की न्यू वृंदावन का प्रोजेक्ट है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रोजेक्ट की स्थापना की थी इस विचार के साथ कि हमारा सिद्धांत हो सादा जीवन और ऊंचा विचार। भौतिक सिद्धांत है ऊंचा जीवन और सादा विचार, पर प्रभुपाद जी स्थापित करना चाहते थे कि थोड़ी सी खेती और गायों के साथ आपकी पूरी आवश्यकताएं प्राप्त हो सकती है। आज के वातावरण में हम सब प्रयास करते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, अनेक भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, पर इन भौतिक सुविधाओं के साथ साथ अनेक प्रकार के कष्ट भी आपको भुगतना पड़ रहा है। जैसे आजकल सबके पास मोटरों की सुविधा है, और एक तरफ से तो मोटरों की सुविधा है, पर दूसरे तरफ से मोटरों के कारण क्या हो रहा है, इतना भारी पोल्यूशन हो रहा है कि, और जिसके कारण सबका स्वास्थ्य बीमार हो रहा है, सबका स्वास्थ्य गिर रहा है। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाहते थे इस आधुनिक युग में थोड़ी सी खेती और गायों की देखभाल के साथ व्यक्ति शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। तो इस भाव के साथ श्री प्रभुपाद जी ने ये न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट की स्थापना की थी और वहां खेती होती है और दूध से अनेक प्रकार की मिठाइयां भी बनती है। न्यू वृंदावन का जो घी है उसका इतना डिमांड है अमेरिका में कि भक्त पैदा ही नहीं उतना बना ही नहीं सकते। तो न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट में प्रभुपाद जी की ये भी इच्छा थी कि वहां जैसे वृंदावन में 7 प्रसिद्ध मंदिर हैं, वैसे उनकी इच्छा थी कि न्यू वृंदावन के कोने कोने में 7 प्रसिद्ध राधा दामोदर राधा मदन मोहन 7 प्रसिद्ध मंदिर बने। और आज भी वहां हजारों भक्त जाते हैं, अतिथि का ना जाते हैं रोज दर्शन के लिए। थोड़ा और बस।
प्रभुपाद थोड़ी कर रहे थे, वे मार्ग में आगे बढ़ रहे थे मानो अपने घर पर टहल रहे हों। वे तीनों नाले के किनारे रुक गए और प्रभुपाद एक कंबल पर बैठ गए, जैसे कीर्तनानंद स्वामी और हरिग्रीव ने उनके लिए घास पर बिछा दिया था। हम कीर्तनानंद के लिए रुक रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा, वह थक गया है। प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने नाले से पानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया और तब वे आगे चल पड़े।
कीर्तनानंद को शुरू से पैर की बीमारी थी, उन्हें पोलियो था, मतलब भक्त बनने से पहले पोलियो, मतलब कि वो चल नहीं सकते थे ज्यादा, पर भक्त बनने के बाद ये बीमारी ठीक हो गई। तो चलने में वो हमेशा थोड़े अस्ते चलते थे, इसके लिए और प्रभुपाद हमेशा बहुत तेज चलते थे, तो इसलिए कहा गया है कि प्रभुपाद जी आगे चल रहे थे, फिर प्रभुपाद जी कीर्तनानंद दूसरों के लिए उन्होंने राह देखी कि वो भी आगे आ जाए।
जब वे सड़क पर एक मोड़ को पार कर रहे थे तब प्रभुपाद ने सामने पहाड़ी की पीठ पर एक साफ मैदान देखा। पहाड़ी के निचले सिरे पर एक छोटा सा फार्म हाउस और एक बखार था। हाइग्रीव ने बताया कि न्यू वृंदावन के 120 एकड़ फार्म पर यही दो संरचनाएं थी। क्योंकि मार्गों पर सवारी गाड़ियां नहीं चलती थीं, इसलिए वे ऊंचे घास से ढक गए थे। बैत वृक्ष की शाखाएं पुराने भवन के आसपास फैली थीं। वहां की बस्ती एकांत आदिम जीवन का चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन का सादा जीवन पसंद आया और भक्त उन्हें जो भी सादी चीजें अर्पित करते वे उन्हें तृप्ति के साथ स्वीकार करते। भक्तों ने ताजा पिसी हुई गेहूं का दूध में पकाया हुआ दलिया उन्हें दिया और उन्होंने कहा, वह आश्चर्यजनक था। जब उन्होंने रसोई घर के कच्चे फर्श को गाय के गोबर से लीपा हुआ देखा तो वे बोले कि वह ठीक भारत के एक गांव की तरह था।
प्रभुपाद जी कहते थे कि सबसे शुद्ध तरीका भोजन बनाने का है गाय के गोबर की आग में को बनाने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, गोबर इज बेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज वर्स्ट। चरतमृता पढ़ेंगे थोड़ा। श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद लीलामृता हम लोग हर एकादशी को पढ़ते हैं। इसके द्वारा आप सब प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से संघर्ष किया और किस प्रकार से संस्था की स्थापना की उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आप में से कितने भक्तों ने प्रभुपाद लीलामृता पढ़ी हुई है? सबको प्रयास करना चाहिए कि वो पढ़े। कहा है चैतन्य चरितमृता का प्रभु, कहा है वो श्लोक चैतन्य चरितमृता, कहा है? सीधा शब्द अनुवाद, समय का भाव है तो हम सीधा अनुवाद अर्थात पढ़ेंगे। ये अनुवाद चाहते हैं, जल्दी करें, ये टाइम कम है।
अनुवाद है, शब्दार्थ नहीं अनुवाद। हे पुत्र, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम उत्पन्न करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। तात्पर्य है, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना लेता है तो उसका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहा करते थे, मेरे पास जितनी संपत्ति मंदिर तथा मठ हैं, यदि उन्हें देकर भी एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना सकूं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। किंतु कृष्ण विज्ञान को समझना बहुत कठिन है और भगवत प्रेम उत्पन्न करना तो और भी कठिन है। अतः यदि श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गुरु की कृपा से किसी शिष्य को शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सके तो गुरु अत्यधिक प्रसन्न होता है। यदि शिष्य उसके लिए धन लाता है तो वह उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ये देखकर कि उसका शिष्य अनुष्ठानों का पालन कर रहा है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। गुरु ऐसे प्रगत शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होता है और उससे कृतार्थ हो जाता है।
अगला अनुवाद करें, अगले श्लोक
अनुवाद फिर से। हे पुत्र, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम उत्पन्न करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ।
तो इस चैतन्य चतुर्मित ग्रंथ में हमें चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है, उनकी शिक्षा का। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है और उनके विषय में आप खास करके तीन प्रसिद्ध ग्रंथों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है। दूसरा है चैतन्य मंगल, जिनकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की है। और तीसरा है चैतन्य चरितमृत, जिनकी रचना कृष्णदास काविराज जी ने की है। तो इस समय हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी गए थे और वहां वो गए पहुंचे थे, एक भक्त चंद्रशेखर आचार्य के घर में ठहरे थे और वाराणसी में उस समय एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी गुरु थे जिनका नाम था प्रकाशानंद सारस्वती। प्रकाशानंद सारस्वती 10,000 शिष्यों के साथ बैठकर वेदांत सूत्र की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि निमाई पंडित उनके शहर में पहुंचा है, पर उनके साथ बैठकर वेदांत का अध्ययन करने के बजाय निमाई पंडित क्या कर रहा है? हरि नाम संकीर्तन कर रहा है। और उन्होंने कहा, ये पागलों जैसे नाचता है गाता है, इसे तो हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। निमाई पंडित छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे और पूरे भारत में ये ज्ञान था कि निमाई संस्कृत पंडितों में सबसे प्रसिद्ध है। तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी की आलोचना कर रहे थे और ये सूचना पहुंच गई महाप्रभु जी के दोस्तों भक्तों तक, खास करके चंद्रशेखराचार्य और काशी मिश्रा। तो उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि आप चलिए उस सभा में, हमारे से ये सहा नहीं जाता कि ये मायावादी गुरु आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी तैयार हो गए मायावादियों की सभा में जाने के लिए। जब महाप्रभु जी उस सभा में पहुंचे तो सारे मायावादी सन्यासी ऊंचे मंच में बैठे थे, पर वहां निमाई पंडित उनके साथ बैठने के बजाय वो बैठे जाकर उस स्थान में जहां की लोग पैर धोते हैं मंदिर जाने से पहले, जैसे आप लोग भारत के कई मंदिरों में पैर धोने की सुविधा होती है अंदर जाने से पहले। तो प्रकाशानंद सारस्वती को लगा, वो आश्चर्य हो गए कि उनको पता था ये बड़े पंडित हैं, ऊपर मंच में बैठने के बजाय नीचे बैठ रहे हैं, और फिर वहां महाप्रभु जी ने एक खास दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे से ऐसा प्रकाश प्रकट किया कि दूर से देखा कि लाखों सूर्यों का प्रकाश उनके चेहरे से प्रकट हो रहा है। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती ने यह लीला देखी तो उनको विश्वास हो गया कि ये जो सन्यासी है कोई साधारण सन्यासी नहीं। और फिर दोनों की चर्चा हुई, उन्होंने कहा आप तो इतने बड़े विद्वान हो संस्कृत के, आप शास्त्रों के ऊपर चर्चा करने के बजाय नाचते, आप शास्त्रों का अध्ययन करने के बजाय नाचते हो गाते हो, ये शोभा नहीं देता। तो फिर महाप्रभु जी ने अनेक प्रसिद्ध श्लोक हैं इस अध्याय में, महाप्रभु ने अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया कि इस कलियुग में हरि नाम एक साधन है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एव गतिरन्यथा, कि हरि नाम एक साधन है जिसके द्वारा आप परम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और महाप्रभु जी ने यह भी कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मैं जो हूं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, उन्होंने सोचा कि मैं मूर्ख हूं, तो उन्होंने कहा तुम केवल ये हरि नाम का जाप करने के योग्य हो, तो उन्होंने कहा कि हरि नाम का कीर्तन करो। तो महाप्रभु जी इन श्लोकों में ये बता रहे हैं कि उनके गुरु ने उन्हें क्या कहा, उनके गुरु कैसे प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। महाप्रभु जी ने ये इस उदाहरण के इस घटना के द्वारा ये भी स्थापित किया कि किस प्रकार हमें निम्रत भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। महाप्रभु जी ने हमें क्या आदेश दिया है, सिनादपि सुनिचेना सरोरपि सहिष्णा मनी न मना देना कीर्तन दी सदानी। अगर महाप्रभु जी चाहते तो जाकर मंच पर बैठ सकते थे दूसरे सन्यासियों के साथ, पर उन्होंने अपने आप को कहां बिठाया, कहां बैठे जहां की लोग प्यार होते हैं बड़ी निम्रता के साथ। तो आज के इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कहीं श्लोक, हाँ, क्योंकि गुरु ने कहा हे पुत्र ये तो अच्छा हुआ यही है ना कि तुमने भगवत प्रेम उत्पन्न करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो ये श्लोक के द्वारा ये स्थापित हो रहा है कि हम सबका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए परम लक्ष्य, भगवत प्रेम को उत्पन्न करना। धर्म का असली भाव यह है कि हम भगवत प्रेम अनुकूल करें। कई लोग धर्म को अपनाते हैं इस भावना से कि धर्म के द्वारा धन अर्थ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा तो इसके द्वारा इसको उपयोग करेंगे किस लिए, भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए कामा। और जब आप देखोगे कि अनेक प्रकार की भौतिक सुविधाएं द्वारा भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे, फिर आपकी क्या इच्छा रहेगी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ कामा मोक्ष। तो श्रीमद् भागवतम जिसे सबसे उत्तम ज्ञान माना जाता है, श्रीमद् भागवतम के आरंभ में कहा गया है धर्म प्रोजितः खैतोतः निर्मसनम सतम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम का उपदेश है वो इस विचार का विरोध करता है क्या अर्थ कामा मोक्ष, और उसके वजह ये स्थापित करता है कि भगवत प्रेम ही अति लक्ष्य होना चाहिए। तो चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी या वानप्रस्थ, हम सबका असली उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवत प्रेम अनुकूल करें। पर भगवत प्रेम अनुकूल करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी इच्छा है कि हम भगवत प्रेम अनुकूल करें और बिना प्रयास के ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सच बात है। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवत प्रेम की स्थिति में आप कैसे पहुंचोगे। पहले वो कहते हैं कि आपके हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो। और अगर आपके हृदय में श्रद्धा होगी तो परम भगवान आपको किसी किसी रूप से साधु की संगत दिलाएंगे। ये संगत आप प्राप्त कर सकते हो भक्त साधु के रूप में या ग्रंथ भागवत के रूप में। जैसे कि ग्रंथों के वितरण पर अधिक बल दिया जाता है इस संस्था के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों द्वारा अनेक व्यक्ति जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे शुद्ध भक्ति के मार्ग में। इसीलिए अगले श्लोक में महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम नाचो गाओ संकीर्तन करो भक्तों की संगत में और घर घर जाकर हरि नाम की महिमा का प्रचार करो। ये था उनके गुरु का आदेश। तो अगर शुद्ध भक्तों की संगत मिले या आपको शुद्ध संदेश की प्राप्ति हो तो उसका ये लाभ होगा कि आप इसके पालन से अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त कर सकोगे। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है कि जो ध्यान जीवन के शत्रु हैं उनको उखाड़ना या नष्ट करना। जैसे कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो आप दवाई लेते हो उसका इलाज करने के लिए। तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भौतिक विचार हैं, इच्छाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का प्रभाव है। और अगर हम इसे इनसे बचना चाहें तो भजन क्रिया ही एक उपाय है। इसलिए इस विषय पर बल दिया जाता है कि हमें जप करना चाहिए, साधना भक्ति रखनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन नियमों के पालन से ही आप भगवत प्रेम के मार्ग के प्रति आगे बढ़ सकते हो, और कोई उपाय नहीं। तो भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ निवृत्ति की प्राप्ति होती है। और आगे क्या, अगर आप भजन क्रिया करते जाओ तो आगे निष्ठा आएगी। निष्ठा का मतलब है भक्ति के मार्ग में जुड़ रहे हो पर आप आसानी से विचलित नहीं होते, हो सकते हो पर आसानी से नहीं। और अगर आप भजन क्रिया का पालन करते जाओगे तो आगे फिर रुचि का भाव उत्पन्न होगा। जैसे कि इस समय हमारी रुचि है किस लिए, भौतिक चर्चा के लिए। तो जब भी हमें मौका मिले पर जलपा करने का हम उसका लाभ उठा लेते हैं। हमारी रुचि है अच्छा प्रसाद खाने के लिए, तो जब भी आपको मौका मिले अच्छा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप उसे स्वीकार करते हो। इस समय हमारी रुचि है आलसी जीवन बिताने के लिए, तो जब भी विश्राम करने का मौका मिलता है हम उसका लाभ उठा लेते हैं। तो यही रुचि हमें प्रकट करनी है किसके प्रति, हरि नाम के प्रति, कृष्णा कथा के प्रति। तो वो संभव हो पाएगी अगर आप भजन क्रिया का पालन करोगे। और अगर आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ फिर अंत में जाके क्या प्राप्त होगा, भगवत प्रेम या कृष्णा प्रेम। तो कृष्णा प्रेम की स्थिति तक पहुंचने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। तो यहां चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा, वो कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती सिंह से कि मेरे गुरु ने क्या कहा मुझे। पिछले 20 श्लोकों से महाप्रभु जी सुना रहे हैं कि गुरु ने क्या कहा। जैसे हमने कहा था हरि नाम की महिमा की चर्चा की, तो गुरु ने कहा ये तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम उत्पन्न करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो हम सब का परम लक्ष्य ये नहीं कि हम पैसा जोड़ें, परम लक्ष्य ये नहीं कि इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं इंद्रिय तृप्ति की सुविधा तो आपको पशु के जीवन में भी प्राप्त होती है। तो अगर मानव जीवन प्राप्त करके आप केवल इंद्रिय तृप्ति की सुविधा के पीछे भागो, तो शास्त्र में कहा गया है इस विषय में धर्मेन हीना पशु भी समाना, ये जो जीवन है पशु के जीवन के समान है। तो हम सबका भाव क्या होना चाहिए, भगवत प्रेम को हम अनुकूल करें, और भगवत प्रेम को अनुकूल करने के लिए ये आवश्यक है कि आप नियमों का भी पालन करो। आगे महाप्रभु जी ने कहा इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं। तो गुरु प्रसन्न कैसे होता है, पापा जी इस विषय की चर्चा करते हैं तात्पर्य में। गुरु प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि शिष्य शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहा है। गुरु की इच्छा क्या है कि हर शिष्य परम भगवान के शरणागत हो, हरि नाम के प्रति आकर्षित हो और शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट करे। तो इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि हम सबका क्या भाव होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान अवश्य ही हमारा सहयोग देंगे। इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद प्रयास करते हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवान अवश्य ही उनका सहयोग करते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा कि जो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए उनके जो गुण हैं उनको मैं रखता हूं, जो कमियां हैं उनको दूर कर देता हूं। तो हम सबका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि भौतिक सुविधा प्राप्त हो, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो। हमें प्रहलाद महाराज के उपदेश का स्मरण करना चाहिए कि ये सब तो हमने अनेक जीवनों में प्राप्त कर लिया है, पर एक ये जीवन हमें देना चाहिए भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और जब तक हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं जुड़ें, जब तक हम भगवत प्रेम हमारा लक्ष्य नहीं बनाएं, जब तक चाहे आपको कितनी भी सुविधा प्राप्त हो जाए आप सदा बेचैन रहोगे। आप 8वें स्कंद में पढ़ते हो कि जब वामन देव जी बाली महाराज के यज्ञशाला में पहुंचे तो बाली महाराज बड़े प्रभावित हुए उनकी खूबसूरती से। उन्होंने कहा मांगो मेरे से, कुछ मांगो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं तुम्हारी। वामन देव ने कहा कि अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हो तो मुझे उतना स्थान दे दो जहां कि मैं 3 कदम रख सकूं। और वामन देव जी ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे से कुछ ज्यादा मांगो, तुम तो निर्दोष बालक दिखते हो मुझे। फिर उन्होंने कहा वामन देव ने कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों पर वश नहीं किया अगर आप उसे सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो बेचैन रहेगा, और जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वह हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो हमें ये समझ आना चाहिए, क्योंकि आज हम भौतिक वातावरण में रह रहे हैं,
जहाँ की हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, पर हमें ये समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए सादा जीवन और ऊंचा विचार। जैसे कि आप लीला मिता में पढ़ बैठे हो, चाहे गृहस्थ हो या किसी आश्रम में हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सादा जीवन और ऊंचा विचार। सादा जीवन बिताने का प्रयास करोगे तो भौतिक आवश्यकताओं के लिए आपको कम समय देना पड़ेगा। भौतिक आवश्यकताओं के लिए कम समय दोगे तो आध्यात्मिक कार्य के लिए अधिक समय आप दे पाओगे, और आध्यात्मिक कार्य के लिए अधिक समय दे पाओगे तो आप ऊंचे विचारों को अनुकूल कर पाओगे। तो यहाँ ये स्थापित किया जा रहा है कि हम सबका परम लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्रेम अनुकूल करना, और गुरु जो है अधिक अधिक प्रसन्नता प्राप्त करता है जब वो देखता है कि शिष्य शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहा है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में ये कहा कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि गुरु प्रसन्न होता है जबकि उसके शिष्य शुद्ध भक्त बनते हैं। तो गुरु का ये भाव है कि हर भक्त जो है शुद्ध भक्त बने। और प्रभुपाद जी यहां भक्ति सिद्धांत जी का उदाहरण देते हैं। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि अगर मैं एक शुद्ध भक्त को भी बना दूं तो मेरा जो जीवन है वो सफल माना जाएगा। तो हम सब का ये भाव होना चाहिए शुद्ध भक्त बने, भगवत प्रेम को अनुकूल करें, और ये संभव हो पाएगा अगर हम ध्यान से जप करें, ध्यान से शास्त्र का अध्ययन करें, ध्यान से वैदिक भक्ति का पालन करें। और आगे महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा तुम नाचते रहो और गाते रहो, भक्तों के साथ नाचो कीर्तन करना करते रहो, वहां जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो। हम जो प्रचार करते हैं, जैसे कल आप सबने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की महिमा के विषय में सुना, क्योंकि आप सब बकायदा ग्रंथ के वितरण की सेवा के महत्व को सुनते आए हो, इसीलिए आप सबने प्रयास करके पिछले महीने 1.5 लाख गीता बांटी। पर हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि हम सारा साल ये प्रचार करते रहे, क्योंकि ग्रंथ के वितरण में क्या है, हरि नाम की महिमा, यही संदेश चैतन्य महाप्रभु जी दे रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं भक्तों के साथ नाचो और गाओ, दूसरे शब्दों में भक्तों की संगत में रहो। भक्तों की संगत में रहना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए शास्त्रों का कहना है साधु संग सर्व शास्त्र काया, सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है, साधु की संगत का लाभ उठाओ। साधु संगत में आप नाचते हो और क्या करते हो और गाते हो। और आगे वो कहते हैं बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो। अक्सर या अधिक मात्रा के लोग समझ नहीं पाते कृष्ण कीर्तन का क्या महत्व है कि नहीं, तो हमें प्रचार करना है कृष्ण के नाम के उच्चारण की क्या आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पढ़ रहे हो, जो मायावादी सन्यासी थे उन्हें नहीं पता था हरि नाम के महत्व के उच्चारण का क्या महत्व है। वो तो महाप्रभु जी की निंदा कर रहे थे, वो तो ये सन्यासियों की निंदा कर रहे थे, क्या पागल जैसे नाच रहे हो और गा रहे हो। फिर महाप्रभु जी ने अपने गुरु के उपदेश का वर्णन करके इन मायावादी सन्यासियों को ये समझाया कि इस कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक भाग्य है, क्या, भगवान के नामों का उच्चारण। भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा ज्ञान से अज्ञान से जो भी महामंत्र को अपनाएगा इसके माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकेगा। तो इसलिए भक्तों का ये कर्तव्य बनता है कि वो परम भगवान की प्रशंसा के लिए घर घर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करें, और आप प्रचार करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। और आप जैसे सुन बैठे हो, कई दफा नित्यानंदा जी भी प्रचार करते करते उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लीला मीता में आप पढ़ते हो कि इस प्रकार प्रभुपाद जी को भी अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर वो प्रचार करते गए। क्यों? क्योंकि ये परम भगवान की इच्छा है। भगवान कृष्ण की क्या इच्छा है? कि सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो कि मेरा प्रचार करता है। तो हम सब भक्तों का भाव लेना चाहिए कि हम प्रचार करते रहें, और अगर हमारा ये भाव रहेगा तो आप अनेक लोगों को जोड़ोगे कृष्ण भक्ति के साथ। कई बार हम सोचते हैं कि कलयुग बहुत गहरा हो गया है, किसी की रुचि नहीं है, ये बात सच नहीं है। आप अगर प्रचार करोगे तो भगवान आपको सफलता देंगे। तो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्रेम अनुकूल करें, और जैसे भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि वो प्रसन्न होंगे अगर उनके अनेक शिष्यों में एक शिष्य भी शुद्ध भक्त बन जाए। शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? कि उसके हृदय में केवल एक ही भावना है, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा के लिए अगर उसे नरक में भी जाना पहुंचना पड़े तो घबराता नहीं। उसकी एक ही चिंता है कि भगवान की सेवा में जुड़े रहें और भगवान के नामों की महिमा का प्रचार वो बढ़ाते जाए। तो चैतन्य महाप्रभु जी इन श्लोकों में शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, और हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवत प्रेम अनुकूल करें। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कोई भी कार्य अगर भगवत प्रेम की स्थिति में पहुंचने के लिए प्रतिकूल बनता है तो उसे क्या करो? त्याग दो। और जो कार्य भगवत प्रेम की स्थिति में पहुंचने के लिए अनुकूल है उसे क्या करो? उसे स्वीकार करो। तो ये लक्ष्य आप सब बनाने को तैयार हो? कौन कौन तैयार है? अच्छा, हाथ उठाने से काम नहीं बनेगा। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये अनुभव किया जाता है कौन गंभीर है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, कौन नहीं है। जैसे जो भक्त बड़े ध्यान से साधना रखते हैं, ध्यान से जाप करते हैं, ध्यान से भगवत पढ़ते हैं, प्रजल्पा से बचते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो भक्त हैं ये भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कि लापरवाही से जाप करते हैं, ठीक साधना नहीं रखते, क्लास में नहीं आते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, तो हम देख सकते हैं कि हालांकि वो दीक्षित हैं पर भगवत प्रेम में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि है काम चलाओ बस। पर शास्त्रों का क्या कहना है? भगवत प्रेम। तो अगर हम देखें कि हम ऐसे कार्य में जुड़े हैं जिसके द्वारा ये भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो हमें घबरा जाना चाहिए। जैसे अगर कोई डॉक्टर आपको कहे आपको कोई गहरी बीमारी हो रही है, कैंसर की है कोई, तब घबरा जाते हो। तो इसी प्रकार अगर हम देखें कि आप भगवत प्रेम के लक्षणों को प्रकट नहीं कर रहे, उस स्थिति में पहुंचने में अड़चने आ रही है, तो हमें प्रयास करना चाहिए उन्हें हटाने के लिए। इसीलिए चैतन्य रूप गोस्वामी जी ने कहा है गुरु की शरण लो, गुरु से दीक्षा लो, गुरु की सेवा करो, आगे पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और अगर कोई त्यागने की आवश्यकता है तो उसे त्यागो और भगवत प्रेम को अवश्य ही प्राप्त करो। और प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है कि भगवत प्रेम की स्थिति पर आप पहुंच सकते हो अगर आप वैदिक भक्ति का पालन करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने इन नियमों पर बल दिया है, और अगर हम नियमों का पालन करें तो अवश्य ही हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की एनी क्वेश्चन? एक प्रश्न से देख सकता हूँ। हाँ हाँ यस।
जब करते हैं मतलब हमको
सफलता नहीं मिलती,
तो जब हमका प्रयास सफल नहीं होता है तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए?
भागवत में भी कहा गया है कि ये नहीं कि जब आप प्रचार कर रहे हो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। ये सोचना कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो मुझे सफलता जरूर मिलनी चाहिए, वो विचार भी गलत विचार है। हमारा विचार भाव रहना चाहिए कि हम हमारा कर्तव्य को निभा रहे हैं, प्रयास करके सफलता मिले तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हम भगवान के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। अगर सफलता नहीं मिले तो दूसरों को दोष देने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रचार में कुछ कमी है, हमारी पवित्रता में कुछ कमी है, तो हमें और ध्यान से प्रयास करना चाहिए पवित्रता प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा प्योरिटी इज अ फोर्स, प्रचार आवश्यक है पर उसकी शक्ति आती है किससे? पवित्रता के साथ। आप खुद देख सकते हो आपके इस मैराथन में आपके कई भक्त हैं जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटा, और मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं कह सकता हूं, पर इन्होंने ग्रंथों को बांटा उन स्थानों में उन व्यक्तियों के साथ जिनका इस कॉन्सेप्ट कोई जान पहचान नहीं था। अब इसकी तुलना में हमारे कई भक्त हैं जिनकी इतनी जान पहचान है कि वो करना चाहें तो बड़े आसानी से चौगुना पांच गुना छह गुना कर सकते हैं, पर आप जब नतीजा देखते हो तो देखते हो कई हैं जिनकी इतनी योग्यता भी नहीं पर उन्होंने मेहनत की और पवित्रता के नियमों का पालन कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त हुई। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम पश्चिम देश में भी यही देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रचार में इतनी सफलता नहीं मिले दूसरे व्यक्ति को दोष देने के बजाय हमें अपने आप को दोष देना चाहिए कि हमें पवित्रता बढ़ाने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? Any other questions? So, Mukesh, I want to have your certificate. Hamon Rupa, yes. Yes.
And they came back, they were not successful.
Oh,
so,
yes.
How we should take this one? You are not successful.
How should we take that? Well, Krishna wanted Prabhupada and his disciples to get the credit for his having established Krishna consciousness all over the world. Chaitanya Mahaprabhu ji ki bhavishyavani thi ki prithvi te aadhe jada nagar adi gam jitne nagar hain kaam hain sab jagah Krishna bhakti ki sthapna hogi. To Bhagwan chahte the ki Prabhupada ji madhyam bane Krishna bhakti ki sthapna karne ke liye. Ab hamara kartavya yah hai ki jo shiksha Prabhupada ji ne hame di hai उसका हम पालन करें गंभीरता से और उसका आगे प्रचार भी करें। तो कल सब भक्तों को सर्टिफिकेट मिल गया था। वी हैव विद अस मुकेश शुक्ला। मुकेश यू वांट टू कम? ही इज फ्रॉम कंपाला युगांडा एंड ही इज वेरी एक्टिव इन कंपाला युगांडा। युगांडा गया है कोई? यू बीन देयर नो? East Africa. So I wanted to give him a special certificate and a garland. He very actively supports our movement in Kampala. He's also supervising printing of Bhagavad Gita and Ugandan. He's a businessman, but both seva karte hain. So, jala. Okay. आप सब भक्तों का शुक्रिया। आप सब ने बहुत मेहनत करके 1.5 लाख गीता बांटी है मैराथन में। अगले साल क्या टारगेट होना चाहिए? 2.5 लाख। चलो अभी से सोचना शुरू करो, पर अच्छा रहेगा अगर सारा साल हम लोगों को प्रचार के माध्यम से जोड़ते रहें। यहाँ प्रचार की इतनी सुविधा है, इतने लोग मंदिर आते हैं। अगर हम सब भक्तों का प्रेम से स्वागत करें, कीर्तन वाले भक्त अच्छी तरह कीर्तन का कीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन द्वारा बहुत लोग प्रभावित होते हैं भक्ति के प्रति। पुजारी सब अपनी भगवान की देखभाल करें अच्छी तरह, और हर भक्त इस मंदिर में बिल्कुल शास्त्र के आधार आचरण रखे, तो आप देखोगे कि भक्तों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपके पास स्थान ही नहीं होगा भक्तों को रखने के लिए, है ना। अच्छा, हरे कृष्णा।